लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कैथलिक कलीसिया की पल्लियां सहभागिता और एकात्मता को अपने केंद्र में रखते हुए विश्वास, बंधुत्व तथा जरूरतमंदों के लिए आतिथ्य के समुदाय बनने में अधिकाधिक उन्नति करते जाएं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर, सिस्टर उषा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह। अफ्रीका अपने भाग्य का नायक बने। कांगो से हाथ हटाएं, अफ्रीका से हाथ हटाएं। विश्व मीडिया में मंगलवार को गूंजी संत पापा फ्रांसिस की इन फटकारों के साथ सार्वभौमिक कैथलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तथा दक्षिण सूडान में अपनी 6 दिवसीय प्रेरित यात्रा का शुभारंभ किया। मंगलवार 31 जनवरी को प्रारंभ यह प्रेरित यात्रा 5 फरवरी तक जारी रहेगी। यात्रा के पहले दिन कांगो के लोगों से संत पापा फ्रांसिस ने आग्रह किया कि वे हिंसा और घृणा को खारिज कर अपने भाग्य को अपने हाथों में लें। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किन्शासा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति फेलिक्स तिशिकेदी सहित देश के गणमान्य अधिकारियों ने संत पापा फ्रांसिस का स्वागत किया। बच्चों ने गुलदस्ते अर्पित किए तथा युवाओं ने गीतों और लोक नृत्यों के साथ उनका भावपूर्ण अभिनंदन किया। तदुपरांत मध्य अफ्रीकी राष्ट्र के अधिकारियों, नागर समाज और राजनयिक कोर से मुलाकात कर संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें अपना संदेश दिया। कांगो की लगभग 9 करोड़ की कुल आबादी में से 50% लोग रोमी कैथलिक कलीसिया के धर्मानुयायी हैं। कैथलिक कलीसिया इस विशाल केंद्रीय अफ्रीकी देश में स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों और कल्याणकारी संस्थाओं का संचालन करने के साथ साथ लोकतंत्र को बढ़ावा देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। संघर्ष, हिंसा, रक्तपात और शोषण के बीच कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के लोगों ने आशा का परित्याग नहीं किया है। वैटिकन न्यूज से बातचीत में 2018 से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में परम धर्म पीठ के प्रेरितिक राजदूत रहे महाधर्माध्यक्ष हेक्टर बालेस्त्रेरो ने संत पापा फ्रांसिस की देश में प्रेरितिक यात्रा के प्रबंधन को अपेक्षाओं के परे निरूपित किया। उन्होंने कहा कि अनगिनत चुनौतियों के बावजूद कैथलिक धर्मानुयायियों का आनंद इतना महान है कि सब कुछ आसान हो जाता है। सपना सचमुच में हकीकत बन गया है। प्रेरितिक यात्रा के प्रथम दिन मंगलवार को संत पापा फ्रांसिस ने अफ्रीका में व्याप्त लालच के जहर से उत्पन्न संघर्षों की कड़ी निंदा की और कहा कि धनी विश्व को इस बात के प्रति सचेत होना पड़ेगा कि धरातल के अंतर में विद्यमान खनिजों की तुलना में लोग कहीं अधिक कीमती हैं। हवाई अड्डे से राजधानी किन्शासा में अपनी पापा मोबिल गाड़ी से यात्रा करते संत पापा का हजारों लोगों ने हर्षोल्लास के साथ करतल ध्वनि, जय नारे लगाकर तथा वैटिकन और कांगो के झंडे फहराकर स्वागत किया। देश आए खास मेहमान की एक झलक पाने के लिए कई मीलों दूर तक लोग पापा मोबिल का पीछा करते दिखाई दिए। संत पापा फ्रांसिस की विदेश यात्राओं का यह सर्वाधिक जीवंत स्वागत था, किंतु खुशी का यह माहौल उस समय एकाएक उदास और शांत हो गया जब 86 वर्षीय संत पापा ने राष्ट्रपति भवन में गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते वक्त कांगो में व्याप्त भयानक शोषण की निंदा की, जहां विशाल खनिज संपदा ने युद्ध, विस्थापन और भूख को बढ़ावा दिया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से अपने हाथों को हटाएं, अफ्रीका से अपने हाथ हटाएं, अफ्रीका का दम घोटना बंद करें। यह छीन लिए जाने वाली कोई खदान नहीं है और न ही यह लूटा जाने वाला कोई इलाका। संत पापा के इन शब्दों को सुनते ही संपूर्ण राष्ट्रपति भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कांगो में व्याप्त शोषण के संदर्भ में संत पापा ने कहा कि लालच के जहर ने उसके हीरों को खून से रंग दिया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हीरा, सोना, तांबा, कोबाल्ट, टिन, टेंटेलियम और लिथिनियम के दुनिया के सबसे अमीर भंडार हैं, किंतु इन्हीं के कारण देश के मिलिशिया, सरकारी सैनिकों और विदेशी आक्रमणकारियों के बीच संघर्ष को प्रश्रय मिला है। खनिजों में काम करने के लिए बच्चों सहित श्रमिकों का अमानवीय शोषण जारी है और साथ ही पर्यावरण को भी क्षति पहुंच रही है। कांगो के विषय में संत पापा ने कहा, ऐसा आभास होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे निगलने वाली हिंसा के प्रति उदासीन हो चुका है। हम उस रक्तपात के आदि नहीं हो सकते जिसने दशकों से इस देश को चिन्हित किया है और जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विश्व उन विनाशकारी हालातों को स्वीकार करेगा जिनसे सदियों के अंतराल में स्थानीय लोगों की हानि हुई है और इस देश और महाद्वीप को नहीं भूलेगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सशस्त्र संघर्षों के कारण अनुमानित तौर पर 57 लाख लोग कांगो में आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं और 26 लाख लोग गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे हैं।
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की अपनी प्रेरिती की यात्रा के पहले दिन संत पापा फ्रांसिस ने कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स शिशिकेदी से औपचारिक मुलाकात के बाद नागर अधिकारियों के साथ बैठक में अफ्रीकी राष्ट्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित किया, जिसमें चल रहे संघर्ष और आर्थिक उपनिवेशवाद शामिल है। संत पापा ने कांगो के लोगों से हिंसा और घृणा को अस्वीकार करने एवं अपने भाग्य को अपने हाथों में लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा संपूर्ण कैथोलिक कलीसिया की निकटता, स्नेह और सांत्वना लाने की उनकी इच्छा से पैदा हुई है और वे सुलह और शांति के तीर्थयात्री के रूप में आ रहे हैं। कांगो की तुलना एक हीरे से करते हुए जो देश के कई धन में से एक है, संत पापा ने कहा कि कांगो के लोग उनकी उपजाऊ भूमि में पाए जाने वाले किसी भी खजाने की तुलना में अधिक कीमती हैं। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता से परे उनके हृदय में एक आध्यात्मिक संपदा भी है, जहां से शांति और विकास का जन्म होता है। हर कांगो निवासी को उनका हिस्सा बनने हेतु महसूस करना चाहिए। हिंसा या घृणा को अब उनके दिल में या किसी के होठों पर जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अमानवीय और गैर ईसाई भावनाएं हैं जो विकास को रोकती हैं और हमें एक उदास अतीत में वापस ले जाती हैं। संत पापा ने उस शोषण पर शोक व्यक्त किया जो कांगो और पूरा अफ्रीकी महाद्वीप आज भी आर्थिक उपनिवेशवाद के रूप में झेल रहा है और कांगो के लोगों को अपनी ही भूमि में विदेशी बना रहा है। संत पापा ने कहा, वर्तमान शांति प्रक्रिया जिसे मैं बहुत प्रोत्साहित करता हूँ, ठोस कार्यों द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता है और प्रतिबद्धताओं को बनाए रखा जाना चाहिए। उन्होंने उन देशों और संगठनों का बहुत आभार व्यक्त किया जो इस संबंध में पर्याप्त सहायता प्रदान कर रहे हैं, गरीबी और बीमारी से लड़ने में मदद कर रहे हैं, कानून के शासन का समर्थन कर रहे हैं और मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दे रहे हैं। कूटनीति के लिए जगह बनाने की जरूरत है जो प्रामाणिक रूप से मानवीय हो, एक ऐसी कूटनीति के लिए जहां लोग अन्य लोगों के लिए चिंता करते हों, एक ऐसी कूटनीति जो भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण, विस्तारवाद और बढ़े हुए मुनाफा पर केंद्रित न हो, बल्कि लोगों को विकास और विकसित होने के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित हो। हीरे के रूपक को जारी रखते हुए संत पापा ने नागरिक और राजनीतिक जीवन में पारदर्शिता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया और कहा, जो चीज समाज में अच्छाई के प्रकाश को मंद कर देती है वह अक्सर अन्याय और भ्रष्टाचार का अंधेरा होता है। इस संबंध में उन्होंने व्यक्तिगत हितों के बजाय पारदर्शी और विश्वसनीय चुनावों को बढ़ावा देने, शांति प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी, आम भलाई और लोगों की सुरक्षा को आगे बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के हर हिस्से में राज्य की उपस्थिति को मजबूत किया जाना चाहिए, कई शरणार्थियों और विस्थापितों की देखभाल की जानी चाहिए। संत पापा ने सबसे कीमती हीरे को चमकने के लिए शिक्षा में निवेश करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस संबंध में खेद व्यक्त किया कि बहुत सारे कोंगो के बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन्हें खानों में बंधक के रूप में काम कराया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। बच्चे और सभी युवा भविष्य की आशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए हम उस आशा को दबने न दें, बल्कि जुनून के साथ विकसित करने दें। अपने लंबे संबोधन को समाप्त करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए सृष्टि के अच्छे प्रबंधक होने की साझा जिम्मेदारी को याद किया और आपातकालीन हस्तक्षेपों से परे जाकर अफ्रीकियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। संत पापा ने कोंगो के लोगों से निराशा और असफलता के आगे नहीं झुकने, बल्कि अपने देश के साहसी और समावेशी सामाजिक नवीनीकरण में संलग्न होने का आग्रह किया।
कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरितिक यात्रा कोंगो के लोगों के प्रति उनकी उत्कंठा को व्यक्त करती है। कोंगो में किंशासा के महाधर्मादेश कार्डिनल फिदोलिन आबोंगो बेसुंगू ने बुधवार को कैथोलिक विश्वासियों के बीच संत पापा फ्रांसिस का अभिवादन करते हुए यह बात कही। किंशासा महाधर्म प्रांत के विश्वासियों के लिए बुधवार को संत पापा फ्रांसिस ने एनदोलो हवाई अड्डे पर ख्रीस त्याग अर्पित किया। इस अवसर पर कोंगो लोकतांत्रिक गण राज्य के कैथोलिक धर्मानुयायियों की ओर से कैथोलिक कलीसिया के विश्व शीर्ष संत पापा फ्रांसिस का अभिवादन करते हुए कार्डिनल बेसुंगू ने कहा, ईश परिवार और ईश प्रजा के रूप में आज यहां ईश्वर की वेदी पर आपके ओर छोर एकत्र समस्त विश्वासियों की ओर से मैं आपको इस सुंदर और महान ख्रीस्त याग के लिए सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने आगे कहा, परम पावन संत पापा हमारे लोगों के इतिहास में एक विशेष और अद्वितीय संदर्भ में आप हमारे देश की यात्रा पर आए हैं। आपकी प्रेरितिक यात्रा हमारे लोगों के प्रति आपकी उत्कंठा और हमारी भूमि एवं संस्कृति के प्रति आपके स्नेह का प्रतीक है। वास्तव में हम आपकी प्रार्थनाओं में, आपके विचारों में और आपके हृदय में उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति और आपकी महान आध्यात्मिक निकटता हमें गहनतम ढंग से प्रेरित करती है। कार्डिनल बेसुंगो ने आगे कहा, आज हम में से हरेक महसूस करता है कि व्यक्तिगत रूप से आपका साक्षात्कार कर हम अपने विश्वास की पुष्टि कर सके हैं। किंशासा और हमारे संपूर्ण देश के कैथोलिक विश्वासियों के लिए यहाँ आपकी उपस्थिति प्रोत्साहन और संतोष का संकेत है और साथ ही आपके साथ महान संवाद और मुलाकात का उपयुक्त क्षण है। हमारे परिवारों के लिए, हम में से प्रत्येक के लिए और कोंगो के लिए यहाँ आकर हमारे साथ समय व्यतीत करने के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि जिस यूक्रिस्त की अध्यक्षता आपने की है वह हमें ख्रीस्त के प्रति और अधिक समर्पित करेगा तथा हमारे लिए एवं देश के लिए वांछित एक सच्ची और स्थायी शांति की कृपा प्राप्त करेगा।
पोप फ्रांसिस ने किंशासा के एंदोली हवाई अड्डे पर ख्रीस्त त्याग अर्पित किया। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा,
ला जोया दी वेदर्वी ए इनकोंट्रार्वी ए ग्रांडे,
आप सभी को देखना और आपसे मुलाकात करना एक बड़ा आनंद है। इस पल के लिए मुझे बड़ी लालसा थी। पास्का की शाम शिष्यों का आनंद भी महान था और यह आनंद और बढ़ गया जब उन्होंने प्रभु को देखा। सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए संत पापा ने कहा, आनंद और विस्मय के इस माहौल में पुनर्जीवित प्रभु उनसे बातें करते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। यह एक अभिवादन है, लेकिन अभिवादन से बढ़कर यह एक वरदान है। क्योंकि शांति जिसकी घोषणा स्वर्गदूतों ने बेतलेहम में उनके जन्म की रात की थी और जिस शांति को वे अपने शिष्यों के लिए प्रदान करने की प्रतिज्ञा करते हैं वे उससे पहली बार उन्हें प्रदान कर रहे हैं। संत पापा ने कहा, यीशु की शांति जिसे हर ख्रिस्तयाग में वे हमें भी प्रदान करते हैं वह पास्का की शांति है। यह पुनरुत्थान से आती है क्योंकि प्रभु को पहले हमारे शत्रुओं, हमारे पाप और मृत्यु पर विजय पाना था तथा दुनिया को पिता के साथ मेल मिलाप कराना था, उस दूरी को दूर करना था जो हमें जीवन और आशा से वंचित कर देती है। अब स्वर्ग और पृथ्वी, ईश्वर और मानव के बीच दूरी को हटाने के बाद यीशु अपने शिष्यों को अपनी शांति प्रदान करते हैं। संत पापा ने कहा, आइए हम अपने आप को उनके स्थान पर रखें। उस दिन वे क्रूस से ठोकर खाने से पूरी तरह अपमानित थे, यीशु को छोड़ने और भाग जाने के कारण आंतरिक रूप से घायल थे। उनके जीवन का अंत जिस तरह से हुआ उसके कारण वे निराश हो चुके थे और उन्हें डर था कि उनका जीवन भी उसी तरह समाप्त हो जाएगा। वे दोषी, निराश, दुखी और भयभीत महसूस कर रहे थे। तभी यीशु आते हैं और शांति की घोषणा करते हैं। वे जीवन की घोषणा करते हैं जब शिष्य मौत से घिरे हुए महसूस कर रहे थे। दूसरे शब्दों में यीशु की शांति ठीक उसी समय आती है जब उन्हें अचानक और विस्मय के साथ महसूस होता है कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, शांति की एक किरण भी नहीं बची है। प्रभु यही करते हैं, वे हमें विस्मित करते, जब हम गिर जाते तो वे हमें अपने हाथों से उठा लेते हैं। संत पापा ने कहा, भाइयों एवं बहनों, यीशु के साथ बुराई की जीत कभी नहीं होती क्योंकि वे ही हमारी शांति हैं। शांति के इस संदेश को हमें अपना बनाना है एवं दुनिया के सामने इसका प्रचार करना है। हम किस तरह यीशु की शांति को बचा सकते हैं? यीशु हमारे लिए शांति के तीन स्रोतों के बारे बतलाते हैं। वे स्रोत हैं क्षमाशीलता, समुदाय और मिशन। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि तुम किसी के पाप क्षमा करोगे तब वे अपने पापों से क्षमा किए जाएंगे, और शिष्यों को पाप क्षमा करने की शक्ति देने से पहले वे उनके पापों को क्षमा करते हैं। सुसमाचार हमें बतलाता है कि उन्होंने उन्हें अपने हाथ और बगल दिखाई। यीशु उन्हें अपना घाव दिखाते हैं क्योंकि क्षमाशीलता घाव से उत्पन्न होती है। यह तभी उत्पन्न होती है जब हमारे घाव घृणा के दाग नहीं छोड़ते लेकिन एक साधन बन जाते हैं जिनके द्वारा हम दूसरों के लिए जगह बनाते और उनकी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। उनकी कमजोरी एक अवसर बन जाती है और क्षमाशीलता शांति का रास्ता बन जाती है। इसका मतलब ये है कि हम प्रेम से अपना हृदय दूसरों के लिए खोलें। यही यीशु ने किया। उन्होंने छोड़कर भागने वालों की उदासी और शर्म का सामना करते हुए अपना घाव दिखाया और करुणा के स्रोत को खोल दिया। उन्होंने शब्दों की बौछार नहीं की लेकिन अपने घायल हृदय को चौड़ा खोल दिया ताकि हमें बतला सकें कि वे हमारे प्रेम के खातिर हमेशा घायल होते हैं। संत पापा ने कहा, भाइयों और बहनों, जब दोषी भावना और उदासी हमें घेर लेते हैं, जब चीजें सही तरीके से नहीं चलती हैं, तब हम जानें कि हमें यीशु के घावों को देखना है जो अपने असीम प्रेम से हमें हमेशा क्षमा प्रदान करने के लिए तैयार हैं। वे हमारे घावों को जानते हैं, ऐसे घावों को जो पीड़ा देती, लगातार घृणा और हिंसा बढ़ाती। हमारे हृदय में ईश्वर आज नबी साइस के शब्दों में कहते हैं, मैं उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा, मैं उनका पथ प्रदर्शन करूंगा और उन्हें सांत्वना दूंगा। संत पापा ने कहा कि आइए हम प्रभु से क्षमा प्राप्त करें और बदले में दूसरों को भी क्षमा दें। संत पापा ने शांति के दूसरे स्रोत की ओर ध्यान खींचते हुए कहा, पुनर्जीवित यीशु सिर्फ अपने एक शिष्य से बात नहीं करते बल्कि उनके दल में प्रकट होते हैं, अपने इस पहले ख्रिस्त समुदाय को शांति प्रदान करते हैं। अंत में संत पापा ने कहा, आइए हम यीशु को संबोधित करते हुए सुने और क्षमाशीलता के साक्षी होने का चुनाव करें, समुदाय के निर्माता बने, ऐसे व्यक्ति बने जो विश्व में शांति के मिशन के लिए समर्पित है।
इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।